ओम शांति। थक गए हैं बैठे बैठे तो ओम शांति भी नहीं बोल सकते। साथ में बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसको हम देखते हैं कि वो आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और सबको शांति का संदेश देने वाली ऐसा एक व्यक्तित्व है जिनका हम देखते हैं। और हमेशा दीदी जी हमारे हरेक प्रोग्राम में हम देखते हैं, टीवी चैनल में सबसे पहले शुरुआत जो हुई है यज्ञ की, जिस समय हमारे पास कोई भी टीवी चैनल का कार्यक्रम नहीं होता था और उस समय सबसे पहले दीदी जी ही टीवी चैनल पे आध्यात्मिक प्रवचन देकर अनेक आत्माओं को उन्होंने प्रेरणाएं दी है, अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन किया। ऐसे पहली बार दीदी ने ही यह कार्य शुरुआत किया था, जो हम दीदी जी का तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बहनें दीदी जी का स्वागत करेंगी बैच और बुके से। विशेष दीदी जी का परिचय हम देखें तो दीदी जी 1948 से मुंबई महानगरी में आपका जन्म हुआ है। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रखते थे और 12 साल की आयु में ही आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और 21 साल की उम्र में आपने अपना पूरा जीवन सेवाओं में समर्पित किया। मानव जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपने ये पूरा जीवन समर्पित किया है। आपने देश विदेश में सेवाएं दी है, 75 देशों में आपने अपनी सेवाएं दी है। और दीदी जी एक शांत चित्त स्वरूप आत्मा है जिसको देखते ही हम देखते हैं कि उनका सरल स्वभाव है और ऐसे ही उनके मुख में सदा सरस्वती बसती है, ऐसा भगवान का वरदान मिला हुआ है आपको। और हमेशा उनके मुख से मधुर वाणी हम टीवी चैनल पे भी सुनी होगी, अभी हम सम्मुख सुनेंगे उनसे। तो ऐसे दीदी जी हमको मिले हैं जो यज्ञ का आदि रत्नों के बाद हम देखें तो दीदी जी ही हमारे यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे आगे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें अनेक राजयोग शिविरों का निर्देशन किया है आपने। और कोई भी प्रोग्राम होता है पहले दीदी जी ही, शीलू दीदी जी आप सदा हर एक प्रोग्राम में हर एक आत्मा आपसे संतुष्ट होके जाती है। तो इस बार भी हमको ऐसा लाभ मिला है कि दीदी जी आप ऐसे यज्ञ के एक हीरो हैं कि डायमंड कोहिनूर हीरा जिसको कहेंगे, भगवान ने बहुत प्यार से तराशा है आपको और उस हीरे को भी भगवान ने अपने दिल रूपी डिब्बी में संभाल के रखा है। ऐसा मैं कहूंगी कि आप ऐसा हीरो भगवान का डायमंड जो आप इस कार्य में बचपन से ही सेवाएं दी है। तो ऐसे दीदी जी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अभी हम दीदी जी के मुख से ही सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के, जिन्होंने परमपिता परमात्मा का जो हमने परिचय लिया सुबह में, और उस परमात्मा किसके तन में आए, कैसे आए, वो एक व्यक्ति कौन थे, उसका व्यक्तित्व क्या था, उनके बारे में हमको दीदी जी बताएंगे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। ओम शांति।
भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर।
ओम शांति। अभी अभी हम सबने एक प्यारा सा गीत सुना, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण करने शिव ने उनमें स्थान लिया। वो दिव्य पुरुष कौन है जिनके द्वारा शिव परमात्मा ने नवयुग सतयुग की स्थापना करने का भार दिया, और कैसे उसने यह कार्य किया, यह संस्था कैसे शुरू हुई, अभी कहाँ तक पहुंची है, ये कई बातें आज मैं आपको इन स्लाइड्स के द्वारा बताऊंगी। एक दिव्य कहानी के रूप में आज से 90 वर्ष पूर्व 1936 में ये कार्य शुरू हुआ। परमात्मा ने एक यज्ञ रचा। यज्ञ क्यों रचा जाता है? जब कोई आफत आती है तो यज्ञ रचते हैं। तो दुनिया में भी बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि चारों ओर विश्व में हम देख रहे हैं दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, विघ्न, रोग, शोक, जो भी शब्द दो ये सब व्याप्त है इस समय। लेकिन ये सदा ऐसे नहीं था। और फिर वो संसार जो सुखमय संसार है वो फिर से कैसे बने, उसके लिए पिता श्री ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी के रूप में हम आपको अभी कई बातें सुनाएंगे जो उनके जीवन से संबंधित है। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और कैसे परमात्मा ने उनको दिव्य नाम दिया प्रजा पिता ब्रह्मा। प्रजा का पिता, वैसे भी ब्रह्मा को रचयिता माना जाता है, तो परमात्मा ने जिसके तन में प्रवेश कर उस सतयुगी दुनिया की स्थापना करने का कार्य सौंपा, वो प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या है, तो कैसे उन्होंने अपना तन मन धन माताओं बहनों के आगे अर्पित किया, एक बीज अपने धन का डाला और आज एक वट वृक्ष के रूप में ये संस्था सारी दुनिया में लगभग 140 देशों में यह कार्य चल रहा है। हजारों सेवा केंद्र, अनेक गीता पाठशालाएं, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अलग अलग ब्रांचेस में यह ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी बन करके लाभ ले रहे हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से एक प्रसिद्ध जौहरी थे, जवाहरात का धंधा करते थे, जवाहरात के जेवर बेचते थे और बड़े बड़े धनी लोग, राजा महाराजा लोग और अंग्रेज जो उस समय राज्य कर रहे थे वो उनके ग्राहक थे। 1876 में उनका जन्म हुआ और 1936 में जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तब उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया और कैसे ये कार्य उन्होंने आरंभ किया। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार बहुत ही सुखी परिवार था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और लगभग सबकी शादी भी करा चुके थे। तो परिवार में कोई दुख नहीं था, जीवन में कोई कमी नहीं थी, समाज में बहुत बड़ा नाम था उनका। जितने ही वो धनी थे उतने ही वो बहुत बड़े दानी भी थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था वो कभी भी उनको हाथ खाली नहीं भेजता था, कुछ न कुछ दान अवश्य करता था और उसी लिए आते थे लोग। साधु संत महात्माएं भी उनके द्वार पर आते थे और उनके वहां सत्संग करते थे, कराते थे वो बाबा। तो बहुत उनका ऊंचा नाम था, तो धनी भी थे, दानी भी थे और एक भक्त भी थे, विष्णु की भक्ति करते थे। कहीं भी वो यात्रा करते थे तो भी ट्रेन में सुबह उठकर नहा धोकर बिना मुंह जूठा किए वे विष्णु की भक्ति करते थे, तो इसीलिए कोई भी उनके जीवन में दुख जैसी चीज नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, कौन सी? सत्य की खोज। सत्य क्या है, हम कौन है, ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? अगर ये ईश्वर की रचना है तो इतना दुख क्यों है दुनिया में? तो कई बार ये प्रश्न उनके मन में उभरते थे और उसके लिए कई शास्त्र उन्होंने पढ़ डाले, अनेक गुरु भी किए, लेकिन कहीं से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो एक कहानी है। अचानक उनको एक दिन विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। अब इसी से उसका जीवन बदल गया। विष्णु के कई रूप, अलग अलग मंदिर है विष्णु के, वो सब उनके सामने आकर के दर्शन देने लगे। चतुर्भुज, चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने साक्षात उपस्थित हो गए और उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, मैं चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। अब बाबत तो विष्णु की भक्ति करते थे और विष्णु के भिन्न भिन्न जो मूर्तियां हैं हमारे देश में और बाहर, वो सब उनके सामने आते गए और एक ही वरदान दिया, अह चतुर्भुज तत्त्वम्। और जब ये ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को ये अनुभव बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि बाबा तो इनके भक्त थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, और अब ये साक्षात विष्णु ने उनको दर्शन देकर कहा तो मेरे जैसे हो। तो बाबा के मन में प्रश्न उठा, मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, दास हूं, यही मानते हैं भक्त लोग, सेवक हूं, मैं तो पतित हूं, गृहस्थी थे, तो मैं इन जैसा कैसे हूं, अब इसका अर्थ क्या है? तो वो अर्थ जानने के लिए बाबा अपने गुरु के पास गए, जो उस समय के गुरु थे, और गुरु को ये सारा अनुभव सुनाया। तो गुरु को भी इतना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको तो भगवान के रूप में देखते थे और उनको ये वरदान मिल गया तो मेरे जैसे हो। तो सोचा कि इनके पीछे कोई राज होगा, तो कहा कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ ईश्वरीय कार्य करवाना है, इसीलिए आपको ये वरदान मिला कि आप मेरे जैसे हो, क्योंकि मेरा काम आपको करना है। तो बाबा को लगा भगवान का काम मुझे करना है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे भगवान का काम करना है, वो भी तो मुझे मालूम हो, तो क्या करना है? तो गुरु ने उनको एक राय दी कि आप इसके लिए एकांतवास में चले जाओ कहीं दूर, और विष्णु का ध्यान लगाओ, आपको विष्णु द्वारा कुछ और अनुभव होंगे और वो अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि भगवान आपसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे और उस समय हैदराबाद सिंध प्रांत ये भारत का हिस्सा था। ये तो 1947 में पार्टीशन हुआ, उसके पहले तो भारत का हिस्सा था, और बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे। तो ये 1936 की बात है, तो उस समय बाबा की आयु 60 वर्ष थी। तो बाबा ने सोचा मैं बनारस जाता हूँ वाराणसी और वहाँ थोड़ी तपस्या करता हूँ अपने धंधे से थोड़ा दूर, और हो सकता है मुझे कुछ और अनुभव हो जो भगवान हमको ये दर्शन देकर कि ये बताएंगे कि तुमको क्या करना है। तो बाबा बनारस चले गए और विष्णु का ही ध्यान करते रहे। तो वहाँ उनको बहुत ही भयावह साक्षात्कार हुआ जिसमें बाबा ने तीन प्रकार से इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार किया। तीन रूप विनाश के, पहला रूप बाबा ने देखा अणु युद्ध के रूप में, अणु युद्ध कैसे एटम बॉम्ब गिराया जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, सब आग लगती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। फिर दूसरा रूप बाबा को दिखाया ग्रह युद्ध के रूप में, सिविल वॉर, जिसमें रक्त की नदियां बह रही थी, सर तलवारें चली, बंदूकें चली और एक दो को मार काट रहे थे और एकदम चारों ओर खून ही खून, चारों ओर ही डेड बॉडीज, तो बिल्कुल जैसे शमशान ये अनुभव बाबा ने किया। और फिर तीसरा साक्षात्कार हुआ प्राकृतिक आपदाओं का, पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों ही तत्वों ने इतना कहर मचाया जो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, वो तो साक्षात्कार कर रहे थे। और देखते ही देखते बाबा ने देखा अंत में प्रलय हो गई, सब कुछ जलमग्न हो गया, सब खत्म, सब कुछ नष्ट हो गया। अब बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या मैं देख रहा हूं, तो बाबा तो रोने लग गए, हे भगवान तो मुझे क्या दिखा रहे हो, ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी? फिर हे भगवान तुमने ये दुनिया बनाई क्यों, अगर खत्म ही होनी है तो बनाई क्यों, और फिर मुझे क्या करना है, मुझे आपने दर्शन दिया तो क्या मुझे कार्य करना है? तो प्रश्न ही प्रश्न फिर से भी उभरने लगे, तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर बाबा को और साक्षात्कार हुए, उन्होंने परम धाम का साक्षात्कार किया, अखंड ज्योति का महतत्व और उसमें छोटे 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 सितारे आत्माएं एक उल्टे झाड़ के रूप में, और उसमें परमात्मा ज्योति स्वरूप वो ऊपर में बीज के रूप में, और कैसे आत्माएं नीचे एक झाड़ उल्टा झाड़ उस रूप में थी, और धीरे धीरे वो आत्माएं उस झाड़ से निकल करके नीचे उतरती गई सृष्टि पर, और जैसे धरती पर उतरी उसी समय वो एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया, देह में आकर के देवी देवताएं बन गए। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कैसे चारों ओर एक सुंदर वातावरण बन गया, पांचों ही तत्वों का सुंदरतम स्वरूप बाबा ने देखा। और फिर बाबा ने इसमें ये भी देखा कि एक सोने का महल और उसकी दीवारों पर हीरे जड़े हुए थे और लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर विराजमान थे, और धीरे धीरे वो महल से बाहर आए और बगीचे में आए और चारों ओर फव्वारे चलने लगे, सुगंध ही सुगंध हो गई, फूल खिले हुए थे, सब इतने सारे छोटे छोटे देवताएं विराज कर रहे थे, म्यूजिक था चारों तरफ, और बाबा तो देखते ही हैरान हो गया, बिल्कुल ये क्या मैं देख रहा हूँ। और फिर उनको एक आकाशवाणी हुई, ये देख ही रहे थे कि उनको एक आकाशवाणी हुई, वो आवाज आकाशवाणी में क्या सुनाई दी उनको, लखीराज उठो जागो, उठो जागो। इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सुंदर दुनिया आने वाली है और ये दुनिया तुमको बनानी है, तुमको बनानी है। ये भगवान ने उनको काम दिया कि ये दुनिया आने वाली है पर बनानी तुमको है। अब बाबा जब इस ध्यान से उतरे तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसी दुनिया बाबा ने कहा मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास ऐसी क्या शक्ति है जो मैं दुनिया ऐसी सुंदर बना दूंगा, तो उसके लिए क्या करना होगा। अभी फिर अगला प्रश्न, करना क्या होगा उसके लिए, वो भी तो भगवान हमें बताए। लेकिन वो जब तक उसको वो पता चले तब तक बाबा के जीवन में बहुत वैराग आ गया, इस कलयुगी दुनिया के लिए बहुत वैराग। इतना वैराग कि जैसे बाबा किसी को भी देखते हुए नहीं देखते थे, बिल्कुल अंदर ही अंदर खोए रहते थे। तो इतना बड़ा जो दुनिया का परिवर्तन बाबा ने देखा, कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया, तो बाबा को लगा कि अगर मुझे कुछ कार्य करना है तो मैं ये बिजनेस जो कर रहा हूँ हीरे जवाहरात का, वो तो मुझे सब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का मुझे कार्य मिला है। और वैराग्य भी आ गया बाबा को। तो बनारस में बाबा थे तो बाबा की दुकान थी, बहुत बड़ा शोरूम था जिसमें हीरे जवाहरात के जेवर बाबा बेचते थे, और अंग्रेज लोग, राजा महाराजा लोग, वो सब इनके ग्राहक थे। तो बाबा बनारस से कलकत्ता चले गए और अपने बिजनेस पार्टनर जो थे उनको बता दिया कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है। और जो हीरे जवाहरातों के जेवर बाबा ने देखे शोरूम में, वो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, बिल्कुल दृष्टि वृत्ति सब कुछ बदल गया। तो बाबा को यही लगा बस अब ये धंधा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे भगवान का कार्य करना है। तो फिर वहां से बाबा अपना बिजनेस वाइंड अप किया, जो उनका शेयर था वो ले लिया, और बाबा कलकत्ता से वापस हैदराबाद सिंध आ गए, जहाँ वो रहते थे, उनका परिवार वहाँ हैदराबाद सिंध में था। और लेकिन बाबा जब वापस आए तो इतना सिंपल, बिल्कुल धोती कुर्ता यही बाबा पहनते थे और कुछ नहीं, धोती कुर्ता। तो बाबा का परिवार ने जब बाबा को देखा कि इतना सिंपल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या इनके जीवन में परिवर्तन आया, कहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन और कहाँ ये सब अपना इतना परिवर्तन। परंतु बाबा जब अपने घर में गए तो अपने परिवार में भी वो एकांत में रहते थे, एकांत में अपने कमरे में रहते थे, और यही अंदर में भगवान से कहते थे, भगवान मुझे क्या करना है, आपने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है पर कैसे करना है वो भी आप मुझे बताइए। अब ये उसी असमंजस में थे कि अचानक बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ घर बैठे, जिसमें ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और परमात्मा ने देखा और बाबा ने देखा कि वो ज्योति इतनी शक्तिशाली थी पर उतनी ही बहुत ही मीठी थी, बहुत ही शीतल भी थी, शक्ति भी और शीतलता भी। और कैसे वो उसके निकट आई, और निकट जैसे आई धीरे धीरे बाबा के शरीर में प्रवेश हो गए और उनकी मस्तक उनके मस्तक में चमकने लगे। तो अब ये उनके परिवार वालों ने देखा कि कैसे बाबा एकदम जैसे उनका चेहरा ही बदल गया, तो वो तो देखते ही रह गए और अचानक आंखें इतनी लाल लाल हो गई और अब मुख से आवाज निकलने लगे, एक आकाशवाणी उनके मुख से। तो क्या आकाशवाणी निकली? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव परमात्मा ने उनके मुख द्वारा अपना परिचय दिया कि मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसे शिव परमात्मा ने उनके मुख से एक आकाशवाणी निकाली, अलग ही आवाज, जो बाबा की आवाज नहीं थी। और परिवार वाले तो कुछ समझ नहीं सके, लेकिन उसके बाद जब वो होश में आए तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या देखा? तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई ज्योति थी, तेजोमय भी थी लेकिन बहुत प्यारी भी थी, और वो ज्योति मेरे अंदर प्रवेश हो गई। बस इतना ही देखा, लेकिन और मुझे कुछ पता नहीं। अब उसके बाद क्या हो गया? चमत्कार होने लगे, चमत्कार। जो भी बाबा को देखता था या बाबा उनको देखते थे, दृष्टि मिलती थी, तो उनको जो सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग व्यक्ति थे वो गुम हो जाता था और उसकी जगह श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली बजाता हुआ ऐसे खड़ा है। ये सब ये अनुभव करते थे लोग, या बाबा को देखते ही ध्यान में चले जाते थे और श्री कृष्ण को देखते थे। एक बहुत बड़ी जैसे क्रांति हो गई, एक क्रांति लोगों के अंदर ये बात फैल गई कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो भी जाता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो दूर दूर तक ये न्यूज फैल गई, यहाँ तक कि अमेरिका के एक टाइम मैगजीन में भी उस समय ये न्यूज आई थी 1936 में कि भारत में एक दादा लेखराज है, उनके पास चमत्कारिक शक्ति है, उनको देखते ही लोगों को उनमें से श्री कृष्ण दिखाई देता है। तो ये क्रांति ऐसी फैल गई जो बहुत लोग आने लगे बाबा के पास। बाबा ओम की ध्वनि करते थे और जैसे ओम की ध्वनि की लोगों को साक्षात्कार होना शुरू हो जाता था। उसमें भी विचित्र बात ये थी कि लेडीज को हुआ, महिलाओं को हुआ, पुरुषों को कम हुआ, पुरुषों को भी हुआ लेकिन बहुत कम, पर लेडीज को बहुत हुआ, महिलाओं को। अब कईयों को तो घर बैठे भी हुआ, बहनों को घर में वो थी, अपने सवेरे सवेरे वो अनुभव कर किया कि कैसे श्री कृष्ण एक बगीचे में बांसुरी बजाता हुआ रास कर रहा है और वो उनके पास जा रही है, तो श्री कृष्ण दूर हो जाता है और दूर होकर के ब्रह्मा बाबा सामने आ जाता है सफेद वस्त्रधारी, और श्री कृष्ण पीछे से इशारे से कहता है कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, मैं आपको वहां मिलूंगा। अब ये कौन थे ये सब तो नहीं जानते थे, तो घर बैठे उनको साक्षात्कार हुए। तो ढूंढ ढूंढ करके बाबा के पास हैदराबाद सिंध में आते थे और जैसे ही बाबा को देखते थे उनको साक्षात्कार होने लगता था। तो दो बड़ी क्रांतिकारी बातें हुई, पहली साक्षात्कारों की और दूसरी क्रांतिकारी बात हुई महिलाओं की, बहनों की, माताओं की, उनको ज्यादा साक्षात्कार हुए, कन्याएं माताएं। और इतनी लगन लग गई कि वो माताएं सोचे, बस अभी तो हमें यहाँ ही स्वाहा होना है, तो बाबा सत्संग कराते थे और ओम की ध्वनि करते थे, गीत लिखते थे। तो एक बहन थी राधे, 17 साल की उम्र थी उनकी, तो वो बहुत अच्छा गाती थी। तो बाबा ने उनको एक गीत दिया जो बाबा ने लिखा था। बाबा ने कहा इसका तर्ज निकाल करके आप ये गीत गाओ। तो वो सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी और बहुत सुरीली आवाज में गाती थी। तो वो जैसे गाती थी या ओम की ध्वनि करती थी तो उनसे लक्ष्मी का साक्षात्कार, राधे का साक्षात्कार होने लगता था। तो श्री राधे श्री कृष्ण जैसे हमने साथ साथ खड़े हैं। उनकी उम्र तो 17 साल की थी और बाबा की आयु तो 60 साल की थी, वो तो उनके दादाजी के बराबर थे। लेकिन कैसे वो बाबा के बने हुए गीत गाती थी। तो माँ के साथ आई थी और माँ को तो बाबा से साक्षात्कार हुआ लेकिन इनको नहीं हुआ। बस ये बहुत गंभीर रहती थी, तो जो बाबा ने उनको कहा वो उन्होंने किया। और माँ बेटी थी, पिता तो गुजर गए थे, तो दोनों बाबा के पास समर्पित हो गए। फिर इसके बाद एक दूसरी बहन थी जिनका नाम रमा था, जो हमारी दादी प्रकाशमणि जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो उस समय 14-15 साल की थी। वो बाबा उनको सवेरे सवेरे अपने घर में साक्षात्कार हुआ था। और वो कैसे बाबा के पास आई और बाबा को देखते ही वो ध्यान में चली गई। अब उनके पिताजी ज्योतिषी थे तो पिता ने उनकी जन्म पत्री से देखा था कि मेरी बेटी जो है वो मीराबाई की तरह पवित्र और योगी जीवन बनाएगी। तो बाबा ने इनको कहा कि आप हमारे पास समर्पित हो जाओ, पिता से चिट्ठी लेकर आओ। क्योंकि बाबा ने उसी समय वो स्कूल भी चला रहे थे जिसमें लड़कियों का स्कूल बाबा ने खोला था। तो बाबा चाहते थे कि ऐसी बहनें, क्योंकि गीता बहुत सुनाती थी, गीता का ज्ञान इनको पता था, तो गीता के ऊपर कुमारियों को, छोटी बच्चियों को ज्ञान देवे। तो पिता को बाबा ने कहा पिता को कहो कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। तो पिता तो जानते थे मेरी बेटी तो मीराबाई की तरह बनेगी, अपना जीवन एक योगी जीवन बनाएगी। तो सहर्ष उसने पत्र लिख के दिया और वो भी समर्पित हो गई। तो इसी प्रकार कई बहनें समर्पित हुई। तो एक छोटा सा परिवार, अलौकिक परिवार तैयार हुआ। और वो तो परिवार कैसे योगी के रूप में रहे। अब एक तीसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई कि बाबा ने इन सबको वायदा कराया, प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। क्योंकि भगवान का कार्य करना था, नई दुनिया की रचना करनी थी, तो हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो इन सब ने प्रतिज्ञा की। छोटी बच्चियां भी थी, वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो भी वहां बोर्डिंग स्कूल में ही रहते थे। तो सब ने प्रतिज्ञा की। अब जब ये समाचार सिंध में फैला तो लोगों ने विरोध किया, बहुत विरोध किया। और बाबा को कहा कि ये क्या किया तुमने, इतनी छोटी छोटी बच्चियों से आपने प्रतिज्ञा करवाई है, इनको क्या पता पवित्रता क्या होती है, दुनिया क्या होती है, और आपने इनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। तो बाबा ने उनको जवाब दिया ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, ये परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा ने इनको ये प्रतिज्ञा करवाई और मुझे भी करवाई, मैंने भी प्रतिज्ञा की। क्योंकि बाबा के पास का तो परिवार था, उनकी पत्नी बच्चे पोते दोते वो सब थे, साथ में ही था, घर में ही रहते थे, और ये भी सब ऐड हो गए, एक अलौकिक परिवार बन गया। तो बाबा ने कहा मैंने भी यही प्रतिज्ञा की है, केवल इन्होंने नहीं की है, लेकिन क्या उसके पीछे राज था वो तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जो विरोध हुआ उस विरोध के कारण बाबा हैदराबाद से कराची चले गए, क्योंकि कराची बड़ा शहर है जैसे मुंबई, मुंबई और पूना अगर देखे तो मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है पूना की भेंट में, तो हैदराबाद से छोटा शहर और कराची तो बहुत बड़ा शहर, तो बाबा कराची चले गए। और उसी बीच करीब 385 भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया था, एक बहुत बड़ा स्वरूप बन गया था और कराची में अलग अलग मकान लेकर के रहने लगे। तो 1937 से लेकर 1950 तक करीब 13-14 साल कराची में रह करके तपस्या की, और कराची क्योंकि सागर के किनारे पर था तो वो बच्चियां रोज सवेरे सागर किनारे जाती थी शॉर्ट्स और शर्ट और शॉर्ट्स पहन करके, और वहाँ एक्सरसाइज करती थी और तपस्या करती थी सागर के सामने। तो बहुत कुछ उन्होंने अपना जीवन में एक परिवर्तन देखा और 14 साल दुनिया का मुंह नहीं देखा, बिल्कुल बस तपस्या और एक्सरसाइज या आश्रम के अंदर ही। अब इन्हीं 14 वर्षों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, 1937 से लेकर 1950 तक। सब पहला परिवर्तन क्या आया, 1939 से लेकर 1945, लगभग 6 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। और इन 6 वर्षों में विश्व युद्ध में बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, हजारों नहीं लाखों। और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान हिरोशिमा नागासाकी जो उनके विरुद्ध में थे अमेरिका के, उनके ऊपर बॉम्ब गिराया, और जैसे बॉम्ब गिराया वो दो शहर बिल्कुल तबाह हो गए, और जापान जर्मनी हिटलर वो उस समय थे, तो उन्होंने हिटलर ने सोचा मैं सारी दुनिया को जीतूंगा, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड वो दूसरे तरफ थे, उन्होंने बॉम्ब गिराया जापान पर और युद्ध तो समाप्त हुआ लेकिन तबाही बहुत मची। तो ये बहनें बाबा से पूछती थी बाबा ये विनाश है क्या, तो बाबा उनको कहते थे नहीं ये तो केवल एक ट्रेलर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें एटम बॉम्ब गिराया, ये तो केवल एक ट्रेलर था। फिर दूसरा 1947 में भारत में बंटवारा हुआ, 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए, तो उस समय भारत में खून की नदियां बही, गृह युद्ध हो गया क्योंकि मुसलमान यहाँ से वहाँ गए और हिंदू बिल्कुल हाथ खाली नंगे पैर भाग भाग के यहाँ आए, और रास्ते में उनको मुसलमानों ने काट लिया, सिर कलम कर दिया, क्योंकि वो कहते थे मुसलमान बन जाओ, अगर नहीं बनोगे तो हिंदुस्तान चले जाओ बिना कुछ यहाँ से लिए खाली हाथ, या तो सिर कटवाओ, बस ओनली 3 ऑप्शंस, या तो मुसलमान बन जाओ, या तो यहाँ से हिंदुस्तान भाग जाओ, या तो सिर कटवाओ। अब कई तो दौड़े पर रास्ते में ही कितने कत्ल हो गए, तो भी कितने लाखों मारे गए होंगे, पर गृह युद्ध हुआ, और वो गृह युद्ध जब चला तो आप जानते हैं कैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, अंग्रेज चले गए, लेकिन वो गृह युद्ध बहुत ही भयावह था, उसका इतिहास में इतना वर्णन भी नहीं है। तो ये बहनें सब कराची में थी और सिंध वो भारत से अलग हो गया। तो बाबा से पूछा, बाबा ये विनाश है क्या? बाबा ने कहा ये भी ट्रेलर है, ये गृह युद्ध भी ट्रेलर है, अणु युद्ध भी ट्रेलर है। फिर उसके बाद कई प्राकृतिक आपदाएं भी हुई, भूकंप हुए बहुत सारे, सुनामी हुआ, मानो चारों ओर प्रकृति ने भी बहुत कहर मचाया। तो बाबा कहते थे ये सब अभी ट्रेलर है। और फिर 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया 26 जनवरी को, तब भगवान का आदेश मिला कि अभी आप भारत जाओ, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भारत ही फिर से सतयुग बनेगा, वही स्वर्ग गोकुल गांव जो हम कहते हैं वो भारत बनने वाला है। इसीलिए भारत में जाकर जो 14 साल आपने या तपस्या की है वो वहां जाकर के भारत में फैलाओ, ये सेवा करो। तो उस समय तो कराची में थे, तो कराची से ये माउंट आबू आए। तो कैसे आए? उस समय चीफ मिनिस्टर थे अल्लाह बख्श, तो वो बाबा के मित्र थे। तो उस समय जो 14 साल ये बिल्कुल अलग रहे, एकदम आइसोलेशन में रहे, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, तो चीफ मिनिस्टर ने उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया, सिक्योरिटी दी चारों ओर, ताकि कोई भी अंदर आ न सके, तो बहुत सेफ रहे। और ये 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की, आप सोचो। तो जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, वापस ये दो देश अलग हो गए, तो ये तो कराची में थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और फिर भी 47 के बाद भी 3 साल वहां रहे। और 1950 में बाबा ने उनको कहा कि आपको अभी भारत जाना है। तो बाबा और मम्मा ने भी बहुत तपस्या की और कैसे भारत में आए। तो कराची के 14 साल तपस्या के बाद ये भारत में आए। तो भारत में भी इनको जब आना हुआ, तो उस चीफ मिनिस्टर ने उनको पूरा जहाज दिया, एक जहाज सी शिप, और उनको कहा अपना सारा सामान ले जाओ भले, क्योंकि उनको भारत में आना था। तो सब कुछ ले आए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ माना सब कुछ, जो उसके पहले आए थे 1947 में वो तो सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन इनको कहा आप सब ले जाओ। तो ये सब देखो कैसे बैठे हैं, और एक जहाज उनको दिया, जिस जहाज में अपना सामान रखा और भारत में आए। तो भारत में ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, ये जामनगर के पास ओखा, जो द्वारका है ना, द्वारका उसके पास ही है। तो वहां पर पहुंचे और वहां से ट्रेन में आबू रोड स्टेशन आए, और माउंट आबू में उन्होंने अपना स्थान बनाया। तो ये 1950 की ट्रेन है, जिस समय कोई रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं होती थी। 14 साल के बाद इन्होंने दुनिया देखी, करीब 385 भाई बहने थे। और माउंट आबू में कैसे, यहाँ पहले आबू रोड उतरे और वहां से माउंट आबू आना हुआ। तो माउंट आबू में यहाँ भरतपुर राजा का महल है, भरतपुर कोठी कहते उसको, तो वहां उन्होंने किराए पर लिया मकान। यहाँ माउंट आबू में चारों ओर बहुत महल है, राजस्थान के जो राजाएं थे, अनेक रियासतें थी यहाँ, उन्होंने अपने महल यहाँ बना के रखे हैं चारों ओर। यहाँ भी पास में अलवर पैलेस है, अलवर राजा का महल है। तो गर्मी के दिनों में ये राजा लोग यहाँ आते थे माउंट आबू में आकर के अपना समर कैपिटल राजधानी बनाते थे गर्मी में। तो अप्रैल में जून ये तीन महीना वो यहाँ रहते थे। तो जब भारत गणतंत्र बन गया तो फिर उन्होंने क्या किया, सारे जो इनके महल थे वो होटल बना दिए। अभी वो महल हैं लेकिन होटल के रूप में, या तो होटल है या तो हॉस्टल है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, विदेशों से भी बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने, या तो फिर होटल है, हॉस्टल है, या तो स्कूल है। तो ये यहाँ अलवर पैलेस है, ये स्कूल है, इसमें खास आर्य समाजियों का स्कूल है, उनको संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, तो वो स्कूल है बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से माउंट आबू में भरतपुर राजा का महल पसंद किया, क्योंकि इतने सारे भाई बहनों को रहना है। तो जहाँ आप लोग माउंट आबू आए होंगे ना, तो बीच में टोल टैक्स, टोल नाका वहाँ आया होगा, आपने टोल टैक्स भरा होगा, तो बस उसी के पास में ही है वहाँ भरतपुर राजा का महल। वहाँ कुछ साल रहे और फिर दूसरा स्थान लिया कोटा हाउस। कोटा भी राजस्थान का ये स्थान, धौलपुर हाउस, तो वो किराए पर लिया। और अभी जो हमारा प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स है मेन, वो माउंट आबू में पांडव भवन है, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ लोग गए भी होंगे जो होकर आए हैं वहाँ पांडव भवन, हाथ उठाए। अच्छा, काफी गए हैं। तो 1950 से 55 तक पहले भरतपुर कोठी में रहे, फिर 55 से 58 तक कोटा हाउस, धौलपुर हाउस रहे, और फिर 58 से वहाँ पर रहना शुरू किया, वो खरीद लिया मकान। और फिर बाबा मम्मा कैसे तपस्या करते थे, यहाँ बहुत पहाड़ है, बहुत जंगल है, तो कैसे तपस्या करते थे। तो 1952 में हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर खुला। हमारी बहनें दिल्ली में गई और दिल्ली में कैसे उन्होंने सेवा केंद्र खोला, और पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। उसके बाद कई निमंत्रण मिले अलग अलग शहरों में, और हमारे सेवा केंद्र दूसरे शहरों में शुरू हो गए। तो वहाँ से भाई बहने माउंट आबू में आते थे बाबा मम्मा से मिलने के लिए। फिर फिर मम्मा भी कैसे बाहर जाती थी, और लखनऊ में मम्मा गई है, तो वहाँ मम्मा से उनको लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। और फिर कानपुर में गई, यूपी में बहुत गई, और जो बहने और जगह जगह गई तो उनसे भी देवी का साक्षात्कार सबको होता था, और कैसे ये सेवा केंद्र चारों ओर खुलते गए। और फिर हमारी मम्मा 1965 में एट दी एज ऑफ 47, 47 वर्ष की आयु में आपने अपना देह त्याग किया माउंट आबू में, यानी विदेह स्थिति को प्राप्त किया, अव्यक्त हुए। 1965 24 जून को आप अव्यक्त हुए, और दीदी मनमोहिनी जी वो नियुक्त हुए, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, क्योंकि बाबा ने सारा कुछ विल माताओं बहनों को कर दिया था, अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी। तो पहले मम्मा जो थी वो जैसे अलौकिक माँ थी, तो उसने जब देह त्याग किया तो दीदी मनमोहिनी को कार्यभार मिला। और दीदी मनमोहिनी बहुत धनी परिवार की थी, बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, वो सिंधी लोगों ने पाकिस्तान से आकर के यहाँ मुंबई में कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, बॉम्बे में आपको मिलेंगे, जो सिंधी लोगों ने सिंध से आकर के यहाँ मुंबई में बनाए। तो उसी परिवार की आप थी। और कैसे फिर बाबा भी बाहर जाते रहे, दिल्ली में गए हैं, वहाँ पर हमारे और केंद्र खुले, फिर वो ग्रुप्स माउंट आबू आते थे, ये पंजाब से ग्रुप आया है, परिवार के परिवार बाबा के पास आते थे, ये जलंधर का ग्रुप है, वो अमृतसर का ग्रुप था, और बाबा ने सबकी बहुत प्यार से सेवा की, बहुत प्यार सबको यहाँ मिला बाबा से, और बाबा के पास कोई पक्षपात नहीं, कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद नहीं, क्योंकि एक परमात्मा का ही ज्ञान सबको देते थे, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, हम सब आत्माएं भाई भाई है, वसुदैव कुटुंबकम है, तो ये सारा ज्ञान देते थे बाबा, सबको पत्र भी लिखते थे, और ये बाबा के अक्षर होते थे उर्दू में, बाबा क्योंकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी भाषा बाबा के लिखते थे, फिर उसकी हिंदी की जाती थी पत्र की। तो पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके ये पत्र लिखते थे, तो ये चारों ओर बगीचा है झोपड़ी के पास, ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, और रोज सुबह ये ज्ञान मुरली सभी सेवा केंद्रों पर चलती है। और इस अभी इस हॉल में अभी हमारे क्लासेस चलते हैं, और चारों ओर इसी हॉल में हमारे चित्र लगे हुए हैं हिस्ट्री के, जो शुरू से लेकर अब तक के, तो वो इसलिए इसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं। ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, और उनका बेड है, और नीचे बैठने का स्थान है जहाँ बाबा नीचे बैठकर सबसे मिलते थे, बिल्कुल सिंपल, कोई भी ठाट वाट नहीं, कुछ भी नहीं, और यही मिलते थे। और 18 जनवरी 1969 को 93 वर्ष की आयु में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, 93 इयर्स की एज में बाबा अव्यक्त हुए, और कैसे फरिश्ता बने, और ब्रह्मा बाबा की याद में पांडव भवन में उनका यह शांति स्तंभ बनाया गया है जो उनकी समाधि है। तो इस समाधि पर हजारों भाई बहने आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। खास 18 जनवरी पर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ तपस्या करने आते हैं भाई बहने, शांति स्तंभ उसका नाम है। तो ये चार धाम है पांडव भवन में जो ब्रह्मा बाबा की स्मृति में बने हैं, एक शांति स्तंभ, दूसरा हिस्ट्री हॉल जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, तीसरा बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा पत्र लिखते थे, और चौथा बाबा का कमरा। तो ये चार कहेंगे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तीर्थ स्थान है ब्रह्मा बाबा के, यादगार स्थान। तो 1969 में जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि जी नियुक्त हुई, जिन्होंने पूरा कारोबार संभाला, दीदी मनमोहिनी तो उनके साथ थे। तो 1969 से लेकर 2007 38 वर्षों तक दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में रही, और दीदी के संग इन्होंने कैसे दिन दुगनी रात चौगनी की गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बढ़ाया। विदेशों में हमारे सेवा केंद्र 1970 से ही शुरू हो गए थे। तो दादी और दीदी ये दो हंसों का जोड़ा कहते थे, जिन्होंने मिल करके यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बढ़ाया। तो शिव परमात्मा ने यही संकेत दिया कि ये आगे रहेंगे, और बैकबोन जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वो शिव परमात्मा ब्रह्मा पिता की आत्मा ये सकाश देंगे और इन बहनों को आगे रखेंगे। तो उसी प्रकार हमारी जो शुरू शुरू की हमारी बहनें थी वो सब दादियां हैं। दादी माना बड़ी बहन, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, जैसे हिंदी भाषा में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं तो सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं। तो ये सब दादियों ने चारों ओर अलग अलग जोन्स में जाकर के ये सेवाएं की। और फिर 1972 में हमारा पहला विदेश का डेलीगेशन मधुबन में आया, ये लंदन का ग्रुप है, ये मधुबन में आया और चारों ओर विदेशों में भी हमारे सेवा केंद्र खुलते गए। 1983 में पांडव भवन के सामने ये ओम शांति भवन तैयार हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की और ब्रह्मा कुमारियों ने संत सम्मेलन किया। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस सब तरफ से संत महात्माएं आए और कैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई। और ये ज्ञान सरोवर 91 में जमीन मिली, 91 में, और 1995 में ये तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 95 में हुआ है, लेकिन ये हॉल जो ऊपर बना है वो बहुत छोटा लगा। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी और बड़ा हॉल चाहिए, तो फिर वो बनाया नीचे, लेकिन साथ में यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्लोबल हॉस्पिटल है अपना, जिसमें 50% जो स्टाफ है वो सब समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और गांव-गांव में कैंप्स लगाते हैं, आई कैंप्स भी लगाते हैं और सेवाएं देते हैं। और फिर 96 में जब ये संस्था के 60 वर्ष हुए थे तब नीचे तलहटी में जहाँ माउंट आबू पूरा होता है वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, करीब 20,000 भाई बहने उस हॉल में बैठ सकते हैं। तो ये 96 में बन के तैयार हुआ, इसलिए इनका नाम रखा है डायमंड हॉल, डायमंड जुबली ईयर। 60 साल हुए थे इस संस्था को, तब नीचे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया और दादी प्रकाशमणि संचालन करती रही। दादी प्रकाशमणि ने अपना 85 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग किया 25 अगस्त 2007 को, और दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में उनकी समाधि बनाई है नीचे शांतिवन तलहटी में, जिसको कहते प्रकाश स्तंभ। और फिर दादी जानकी जी जिन्होंने 2020 में 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया, तो 2007 के बाद दादी जानकी जी इसकी मुख्य प्रशासिका बनी और 2020 तक, और 2020 में इन्होंने देह त्याग किया। और दादी जानकी ने विदेशों में बहुत सेवा की, जिस जिस देश में जाती थी दादी जानकी वहाँ सेवा केंद्र खुल जाता था। तो 2020 में आपने अपना देह त्याग किया और उनकी और दादी जानकी जी बहुत प्रशिक्षण देती थी कुमारियों के लिए, प्रशिक्षण टीचर्स के लिए प्रशिक्षण, बहुत पावरफुल क्लासेस कराती थी। 1,00,000 की सभा में भी दादी जी भाषण करते थे। और फिर दादी प्रकाशमणि दादी जानकी के बाद दादी हृदय मोहिनी जी वो मुख्य प्रशासिका बने, और दादी हृदय मोहिनी जी इनकी विशेषता थी ये बहुत ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में जाकर के कैसे शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रवेश होती थी और वाणी चलाती थी। तो वो वाणी हम रिले करते थे अपने पीस ऑफ माइंड चैनल में। आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, जिन्होंने ये देखा था वो हाथ उठाए। अच्छा, तो आपने जरूर अनुभव किया होगा। तो 2021 में आपने अपना शरीर 95 वर्ष की आयु में त्यागा और उसके बाद दादी रतन मोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, मुख्य प्रशासिका, जिन्होंने अपना देह त्याग पिछले साल ही किया 101 वर्ष की आयु में। और वर्तमान समय हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मुख्य प्रशासिका मोहिनी बहन, वो न्यूयॉर्क में रहती है अमेरिका में, और यहाँ 6 महीना रहती है, 6 महीना वहाँ रहती है। और उनके साथ जयंती बहन, जो दादी जानकी जी के साथ रहते थे, वो सह मुख्य प्रशासिका के रूप में है। और नीचे हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, हमारी मुन्नी दीदी है, वो पूरा नीचे का संभालते हैं। ऐसे ही हमारी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स भी है, और एक एक जोन की भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है। इस प्रकार से यह संस्था कैसे सुचारू रूप से कार्यरत है, और एक ही लक्ष्य लेकर कि हमें इस विश्व को परिवर्तन कर एक सतयुगी नई दुनिया इस धरा पर लानी है, और आप सबको उसमें सहयोगी बनना है। तैयार है सब? सहयोगी बनने के लिए तैयार है? तब ये संसार में फिर सतयुग आएगा। तो कई भाई बहने पूछते हैं कि आपकी फीस क्या है, यहाँ इतना आप सिखाते हैं, आपकी फीस क्या है? वैसे तो सब स्वइच्छा है, जो जितना देते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन बॉक्स है बाबा के कमरे में, उसमें डालते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारी फीस है 5 खोटे पैसे। कौन से खोटे पैसे? कौन से खोटे पैसे? 5 खोटे पैसे जो हर एक के पास है। जी कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 खोटे पैसे दान करो। जो समझते हम ये 5 खोटे पैसे दान करेंगे, वो हाथ उठाएं। देखो, तभी तो सतयुग ला सकेंगे ना इस सृष्टि पर। तो 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। अब ये पहली है, 1 आना माना, जैसे पहले होता था ना 16 आना 1 रुपए में, तो 1 आना माना 1 बार रोज सेवा केंद्र पर आना, ये है 1 आना। तो कुछ देके जाओ और कुछ लेके जाओ, यही आपसे हम संकल्प लेते हैं। तैयार है उसके लिए? तो सब ताली बजाओ अपने लिए। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपने शुरू से लेके 90 वर्ष का पूरा इतिहास सुना। अब आपको खुद निर्णय करना है कि जैसे हमारे लाखों परिवार इस सेवा केंद्रों पर आते हैं, आप भी अपना जीवन सफल करें, मेडिटेशन सीखें, और अपनी जो खेती आप करते हैं उसको योगिक खेती बनाएं, जैविक खेती बनाएं। जो केमिकल्स इतने आज डाल के दुनिया में किस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है, वो सब हम खत्म करें। हमारे यहाँ भी बहुत जमीन है, करीब 100 एकड़ जमीन अभी यहाँ अबू रोड से थोड़ा ही आगे है, जहाँ इतनी अच्छी खेती होती है, इतनी सब्जियाँ, इतना फल सब निकलता है, जहाँ वो सब हमारे कॉम्प्लेक्सेस में हम यहाँ यूज करते हैं। आप जो कुछ खाते भी हो वो भी उसी खेती से ही आता है। और नीचे अबू रोड में भी बहुत खेती है, और वहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स बहुत होते रहते हैं। तो आप जब नीचे जाएंगे तो वो तलहटी में जो शांति वन है वो भी देखेंगे, और फिर तो कई कहते हैं हम दोबारा आ सकते हैं, हम कहते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं? आपका घर है, भगवान का घर है, लेकिन पहले वहाँ विद्यार्थी बन के सेवा केंद्र पर जाना, मेडिटेशन करना, कुछ संकल्प लेना, तो फिर तो ये आपका ही परिवार है। ठीक है, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने सभी को पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा से अवगत कराया, यज्ञ से अवगत कराया, कैसे ये यज्ञ चलता है, बहनों के संचालन से कैसे ये यज्ञ संभाला जाता है, ऐसे सब जानकारी हमें दीदी जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका।